ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भूमि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2082 प्रतिनिधि सभा से बहुमत से हुआ पारित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन भ्रमण के बारे में प्रतिनिधि सभा को कराई जानकारी। अछाम की पंचदेवल विनायक नगरपालिका में पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आकर छावगोट में सोई हुई एक महिला और एक बच्ची की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कुछ दिनों से नेपाल में मॉनसून है सक्रिय, 24 घंटे में सुर्खेत में 292 मिलीमीटर हुई वर्षा। और गजा पर इसराइली हवाई हमले में कम से कम 71 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भूमि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने विधेयक 2082 बहुमत से पारित हो गया है। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब देते हुए भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने बताया कि भूमि संबंधी आयन में उलझे मुद्दों में एकरूपता कायम करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए ये विधेयक आवश्यक हो गया था। मंत्री अधिकारी ने सदन को जानकारी दी कि भूमिहीन अस्थायी निवासियों और अव्यवस्थित ढंग से बसे लोगों को जमीन उपलब्ध कराते समय प्राकृतिक आपदा के उच्च जोखिम वाले स्थान को छोड़कर वर्तमान में जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वही उपलब्ध कराना इस विधेयक का उद्देश्य है। बैठक में सांसदों ने कहा कि विधेयक में भूमि का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने और भूमिहीन अस्थायी निवासियों की समस्या के समाधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, लेकिन सीमा से अधिक जमीन की बिक्री और अदला बदली करने की अनुमति, वन क्षेत्र की जमीन का फिर से नक्शा नवेशी करने जैसे कुछ प्रावधानों से अनियमितता और स्वास्थ्य समूह का वर्चस्व बढ़ने की आशंका जताई। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाल नागरिकता दूसरा संशोधन विधेयक 2081 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश सहित विधेयक टेबल किया गया। इससे पहले बैठक में सांसदों ने गन्ना किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। सांसदों ने कहा कि गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से किसान बार बार आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं और अभी भी आंदोलन हो रहा है। उन्होंने किसानों को पहले से दिए जा रहे उत्पादन आधारित अनुदान जारी रखने और बकाया राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की। सांसदों ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जंगली जानवरों के हमलों से मानव और पशुधन की क्षति बढ़ रही है, इसलिए मानव और जंगली जानवरों के संघर्ष को कम करते हुए नागरिकों की सुरक्षा पर समय रहते ध्यान देने का आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज भी प्रतिनिधि सभा की बैठक का बहिष्कार किया है। विजिट वीजा प्रकरण की जांच के लिए संसदीय विशेष जांच या उच्चस्तरीय न्यायिक जांच न कराए जाने का हवाला देकर दोनों दलों ने बैठक का बहिष्कार किया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 18 गते बुधवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल से होने वाले चीन दौरे के विषय में सदन को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ओली मित्र राष्ट्र जनवादी गणतंत्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आज से भाद्र 18 तक होने वाले 5 दिवसीय दौरे के लिए कल चीन प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ओली चीन के थियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे से नेपाल और जनवादी गणतंत्र चीन के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही एससीओ शिखर सम्मेलन में उनकी सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर नेपाल की अवधारणा एवं प्राथमिकताओं की प्रस्तुति से देश की छवि एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ मुलाकात होगी और चीन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग रात्रि भोज में भी वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि भाद्र 16 को थियानजिन में होने वाले एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन में भाग लेकर उन्हें संबोधन भी करना है। उन्होंने बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न मित्र राष्ट्रों के राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है और इन मुलाकातों में द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताओं के विषयों पर चर्चा होगी। चीन दौरे के दौरान विश्व के नेताओं के साथ नेपाली प्रतिनिधिमंडल चीन सरकार द्वारा बीजिंग में आयोजित फासीवाद विरोधी विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जनता के प्रतिरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे, ये जानकारी भी दी गई। राष्ट्रसभा की आज की बैठक में सांसदों ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में सांसदों ने नेपाल के सहमति के बिना भारत और चीन द्वारा लिपुलेख व्यापार समझौता किए जाने का विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आसन्न चीन यात्रा के दौरान भारतीय और चीनी समकक्षों के साथ कूटनीतिक वार्ता करने का आग्रह किया। बैठक में सांसदों ने विदेशी शिक्षा के नाम पर कुछ कंसल्टेंसियों द्वारा छात्रों को भेजे जाने पर मानव तस्करी की आशंका बढ़ने और विदेशी धरती पर छात्रों के असहाय होने के बारे में सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी तरह सांसदों ने जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू सहित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने, हैदा महामारी को आपातकाल घोषित कर मुफ्त इलाज और जांच की व्यवस्था करने, आंदोलनरत गन्ना किसानों और लकड़ी व्यापारियों की मांगों का शीघ्र समाधान करने और महिला स्वास्थ्यकर्मियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पेशेवर सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। अछाम की पंचदेवल विनायक नगरपालिका वार्ड नंबर 8 सेवा पानी में छाव गोठ में सोई हुई एक महिला और एक बच्ची की पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। छाव गोठ में सोए होने के दौरान ऊपर से गिरे पत्थर की चोट से सेला पानी स्थित चुरखोली टोल की 35 वर्षीय नीम खनाल और मंगल सिंह नगरपालिका वार्ड नंबर 6 की 7 वर्षीय कविता भंडारी की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। पत्थर लगने से गोरे भंडारी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों से नेपाल में मॉनसून अधिक सक्रिय हो रहा है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मापन अनुसार 24 घंटे की अवधि में सुरखेत के खानीखोला वर्षा मापन केंद्र में सबसे अधिक 292.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। विभाग की मौसम पूर्वानुमान महाशाखा की वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानंदर ने बताया कि न्यूनचापीय प्रणाली सक्रिय होने के कारण पश्चिम क्षेत्र के निश्चित केंद्र में अधिक लेकिन सीमित क्षेत्रों में खंडित बारिश हुई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने गैरकानूनी तौर पर सार्वजनिक जमीन व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर अकूत संपत्ति अर्जन किए होने के आरोप में नापी कार्यालय भैरहवा रूपंदेही के नापी अधिकृत सुग्रीव यादव के विरुद्ध आज विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप के मुताबिक राजनीतिक व्यक्तियों और आला विभागीय प्रमुख को प्रभाव में रखकर नापी अधिकृत प्रमुख होने वाले पोस्ट को रिक्त रखकर सालों तक निमित्त कार्यालय प्रमुख के रूप में रहकर यादव ने गैरकानूनी तौर पर संपत्ति अर्जित की है। अख्तियार के मुताबिक यादव ने विभिन्न आय के माध्यम से 9,03,95,000 रूपये की संपत्ति वैध दिखती है, वहीं 5,79,62,000 रूपये की संपत्ति का स्रोत नहीं दिख रहा है। अख्तियार ने स्रोत विहीन रकम पर क्लेम करते हुए विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया है। ये जानकारी आयोग के सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी ने दी। बांके की राप्ती नदी में एक दशक पहले आई बाढ़ के कारण विस्थापित सैकड़ों परिवारों की पुनर्स्थापना नहीं हो सकी है। बाढ़ पीड़ित परिवार को न तो राहत मिली है और न ही सुरक्षित वास का कोई निराकरण हो सकी है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। काठमांडू के जड़ी बूटी स्थित ओवरब्रिज के पास पार्क की हुई बस में तेज गति में आई स्कूटी के टकराने से स्कूटी पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। काठमांडू जिला प्रहरी परिसर के मुताबिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके काभ्रे पलांचुक की पांचखाल नगरपालिका 2 होक्से के 23 वर्षीय नितेश नेपाल और नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम सुनबल नगरपालिका के 22 वर्षीय शिरीष पौडेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गजा सिटी पर इसराइली सैन्य कार्रवाई जारी है। کل رات شہر پر اسرائیلی بمباری میں 16 لوگ مارے گئے اور درجنوں گھائل ہوئے ہیں، جبکہ پورے فلسطینی کھیتر میں اسرائیلی حملوں میں کل 71 لوگ مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی سینا نے کہا ہے کہ حماس اور انیہ آتنکی سنگٹھنوں کے پورے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے غزہ پٹی میں ابھیان جاری رہے گا۔ غزہ کے دکشنی بھاگ میں استھت راحت وترن کیندر پر کھانا لینے گئے لوگوں پر اسرائیلی فائرنگ میں 4 لوگ مارے گئے ہیں اور 27 گھائل ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی کے سب سے بڑے شہر غزہ سٹی پر قبضے کا اسرائیل کا ابھیان شروع ہو گیا ہے۔ منگلوار بدھوار رات اسرائیلی سینا کے ٹینک گولہ باری کرتے ہوئے غزہ سٹی کی سیما میں داخل ہو گئے اور ان کی مار سے فلسطینیوں کے خالی پڑے گھر دھوست ہونے شروع ہو گئے۔ کئی ستھانوں پر سینا کا حماس سے سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ANI کے انوسار اسرائیلی سینا کی کیباتی بریگیڈ اور حماس لڑاکوں کے بیچ بھیشن لڑائی کی سوچنا ہے۔ اسرائیلی سینا نے حماس لڑاکوں کی ٹکڑی کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے فلسطینی سنگٹھن کے شستراگار کو نشٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل سرکار نے اسی مہینے کی شروعات میں حماس کے پربھاؤ والے غزہ سٹی پر زمینی کارروائی کرنے اور اسے ستھائی روپ سے اپنے قبضے میں رکھنے کی یوجنا کی گھوشنا کی تھی۔ انتراشٹری سمودائے نے اسرائیل کے قبضے کی یوجنا کی نندا کی ہے اور اس کے درگامی دشپریناموں کی چیتاونی بھی دی ہے۔ گھوشنا کے بعد اسرائیلی سینا نے اب وہاں پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب موسم، اگلے 24 گھنٹوں میں کاٹھمانڈو گھاٹی کا ادھکتم تاپمان 27 سے 29 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 20 سے 22 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی سمبھاونا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کاٹھمانڈو گھاٹی کا ادھکتم تاپمان 26.5 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 20 ڈگری سیلسیس رہا۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ بھومی سمبندھی کچھ نیپال آئینوں کو سنشودھت کرنے کے لیے بنے ودھیک 2082 پرتنیدھی سبھا سے بہمت سے ہوا پارت۔ پردھان منتری کے پی شرما اولی نے چین بھرمن کے بارے میں پرتنیدھی سبھا کو کرائی جانکاری۔ اچھام کی پنچدیول ونائک نگر پالیکا میں پہاڑ سے گرے پتھر کی چپیٹ میں آ کر چھاؤ گوٹ میں سوئی ہوئی ایک مہیلا اور ایک بچی کی ہوئی موت، ایک ویکتی گمبھیر روپ سے گھائل۔ کچھ دنوں سے نیپال میں مانسون ہے سکری، 24 گھنٹے میں سرخیت میں 292 ملی میٹر ہوئی برشا اور غزہ پر اسرائیلی ہوائی حملے میں کم سے کم 71 فلسطینیوں کی ہوئی موت۔ ریڈیو نیپال سے پرسارت رات 10 بجے کے ہندی سماچار سماپت ہوئے۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے نیپالی میں سماچار۔ نمسکار، شبھ راتری۔